ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। किशोरियों के लिए कल पूरे देश में सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध होगा टीका अभियान संचालित। 10 से 14 साल की उम्र की किशोरियों को टीका लगाए जाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। आत्मविश्वास के साथ काम किया जाए तो नेपाल कभी पिछड़ेगा नहीं, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। और सीरिया में एक कार बम विस्फोट में 19 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कल से पूरे देश में एक साथ सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध निशुल्क टीका अभियान संचालित करने जा रही है। अभियान अंतर्गत सरकार 6 से 10वीं कक्षा तक अध्ययनरत छात्राओं और किसी कारणवश विद्यालय से बाहर रही 10 से 14 साल की उम्र तक की किशोरियों को टीका लगाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि यदि सभी आत्मविश्वास के साथ काम करें तो नेपाल पीछे नहीं रहेगा। श्री पंचमी के अवसर पर काठमांडू में आयोजित युवा अंतर्क्रिया कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि यदि सभी आत्मविश्वास के साथ काम करें तो नेपाल के पीछे रहने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने विकास के लिए पूर्वाधार तैयार करने और आधुनिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर युवाओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने का संकल्प भी व्यक्त किया। नेपाल और चीन के बीच संबंधों के सवाल पर प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल ने चीन, भारत सहित विभिन्न देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा है। उन्होंने हाल ही में चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फ्रेमवर्क पर समझौते सहित विभिन्न सहयोग के विस्तार की जानकारी दी। इस दौरान छात्रों ने प्रधानमंत्री ओली से उनकी रुचि के विभिन्न पहलुओं पर सवाल भी किए थे। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि विकास के लिए अधिकारों का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय नीति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा आज पोखरा में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम में सभापति देउवा ने यह बात कही। उन्होंने नेता कार्यकर्ताओं से हमेशा देश और जनता के पक्ष में मेहनत के साथ काम करने का आग्रह किया। पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र, प्रदेश, जिला और निर्वाचन क्षेत्र सहित सभी स्थानों में संचालित होगा, ये बात उपसभापति पूर्ण बहादुर खड़का ने बताई। नेकपा माओवादी केंद्र ने नेताओं के कार्य विभाजन में फेरबदल किया है। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के निवास खुमलटार में आज हुई पदाधिकारी बैठक ने 7 भौगोलिक और विशेष प्रदेश तथा प्रवास समिति के लिए इंचार्ज की जिम्मेदारी तय की है। बैठक ने कोशी प्रदेश के लिए उप महासचिव हरिबोल गजरेल, मधेश के लिए उप महासचिव मातृका प्रसाद यादव, बागमती के लिए सचिव हितमान शाक्य, गंडकी के लिए सचिव दीनानाथ शर्मा, लुम्बिनी के लिए सचिव चक्रपाणी खनाल, कर्णाली के लिए स्थायी समिति सदस्य काली बहादुर मल्ल और सुदूर पश्चिम के लिए उप महासचिव गिरिराज मणि पोखरेल को इंचार्ज की जिम्मेदारी दी है। ये जानकारी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा ने दी। बैठक ने विशेष प्रदेश के लिए जयपुरी घरती, प्रवास सार्क के लिए लक्ष्मण पंत, प्रवास यूरोप अमेरिका अंतर समिति के लिए सचिव राम कार्की, प्रवास एशिया समिति के केंद्रीय सदस्य ओम शर्मा को इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है। माओवादी केंद्र ने आगामी फागुन 12 गति से हुलाकी राजमार्ग केंद्रित जन जागरण अभियान संचालन करने का निर्णय किया है। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने कहा कि ज्येष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार सचेत और संवेदनशील है। रूपंदेही की तिलोत्तमा में निर्माण होने वाले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केंद्र के अत्याधुनिक भवन का शिलान्यास करते हुए उप प्रधानमंत्री पौडेल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और आकांक्षाओं पर सरकार का पूरा ध्यान है। आज ही नेपाल पत्रकार महासंघ रूपंदेही द्वारा आयोजित विमर्श में अर्थमंत्री पौडेल ने कहा कि संविधान की रक्षा, इसके प्रभावकारी क्रियान्वयन और सुशासन सरकार के मुख्य एजेंडे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड़का को न्याय परिषद सदस्य पद पर नियुक्त किया है। नेपाल के संविधान के मुताबिक नेपाल बार एसोसिएशन की सिफारिश पर राष्ट्रपति पौडेल ने खड़का को परिषद के सदस्य पद पर नियुक्त किया। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराय ने दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने काठमांडू के कुलेश्वर, बानेश्वर, चोरपाटी और कीर्तिपुर वितरण केन्द्रों के अंतर्गत आने वाली विद्युत वितरण लाइनों को भूमिगत करने के लिए आज से 8 दिनों तक बिजली आपूर्ति बंद रखने का निर्णय किया। प्राधिकरण के आयोजना प्रबंधन निर्देशालय ने बताया कि इन फीडरों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आज सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रही। निर्देशालय के अनुसार माघ 21 को चावहिल के आसपास के क्षेत्र, 22 माघ को कलंकी मालपोत के आसपास के क्षेत्र, 23 माघ को बालकुमारी, इमाडोल और लुभो के आसपास के क्षेत्र, 24 माघ को नैकाप से बलम्बू तक के क्षेत्र, 25 माघ को बलखू से चुभार गेट तक के क्षेत्र और 27 माघ को जोरपाटी फीडर के अंतर्गत बाबा चौक से क्रिकेट स्टेडियम तक के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसी तरह 28 माघ को गौशाला चौक से पुरानो बानेश्वर तक के क्षेत्र और 29 माघ को रातोपुल से गौशाला तक के क्षेत्र में भी बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। 8 दिनों तक बिजली आपूर्ति बंद रहने के संबंध में प्राधिकरण ने लोगों से क्षमा मांगते हुए कहा है कि यदि मौसम प्रतिकूल होता है तो शटडाउन नहीं होगा। राष्ट्रीय गौरव वाली परियोजना के रूप में रहे पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत नारायणगढ़ बुटबल खंड के विस्तार के काम को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। नारायणगढ़ बुटबल सड़क योजना पूर्वी खंड के सूचना अधिकारी इंजीनियर शिव खनाल के मुताबिक पूर्वी खंड के अलग अलग 18 स्थानों में पिचिंग का काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब करीब 22 किलोमीटर की पिचिंग होने पर नारायणगढ़ से दाउन्ने तक एक लेन सड़क की पिचिंग का काम पूरा हो जाएगा। हर साल माघ शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाने वाली वसंत पंचमी आज विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा आराधना के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आज सुबह काठमांडू के वसंतपुर स्थित नासव चौक पर वसंत श्रवण किया गया। आज के दिन विशेषकर साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक, कानून व्यवसायी और विद्यार्थी कलम, कॉपी, किताब, कूची, वाद्य यंत्र आदि की पूजा विद्या और सृजन की देवी माता सरस्वती के रूप में करते हैं। वसंत पंचमी के अवसर पर राष्ट्रपति रामचंद्र पोटेल ने आज सुबह हनुमान ढोका दरबार स्थित नासव चौक पहुंचकर वसंत श्रवण किया। समारोह में उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत, सभामुख देवराज घिमिरे और राष्ट्रीय सभाध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल उपस्थित थे। नेकपा एकीकृत समाजवादी ने आगामी फागुन 8 और 9 गते काठमांडू में केंद्रीय कमेटी बैठक का आह्वान किया है। बैठक में पार्टी के सांगठनिक सुदृढ़ीकरण, वार्ड तहों के कामों की समीक्षा, समसामयिक राजनीतिक विषय, वामपंथी शक्ति बीच एकता, समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ बनाए गए मोर्चा लगाए मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, ये जानकारी पार्टी ने दी। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत की संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति ने समिति की गतिविधि, प्राप्त उपलब्धि, समस्या, चुनौती और आगामी कार्यभार समेटकर सरोकार दर्पण पुस्तक साझा की है। संघीय संसद सचिवालय में आज सरोकार दर्पण पुस्तक का विमोचन करते हुए राष्ट्रीय सभाध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने कहा कि समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तक राष्ट्रीय सभा और समिति मार्फत किए गए कामों का दस्तावेज बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष दाहाल ने कहा कि संघीयता सबलीकरण, हिमालयों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति संरक्षण लगायत कामों में राष्ट्रीय सभा की समितियां गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने कहा कि और अधिक विमानस्थल निर्माण, निर्मित विमानस्थलों की स्तरोन्नति और व्यवस्थापन, टावर निर्माण, पर्यटन पदमार्ग निर्माण जैसे मंत्रालय के कामों में राष्ट्रीय सभा को सहजीकरण करना चाहिए। चितवन के बीपी कोयराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल ने प्रादेशिक स्तर पर सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिल रहा है। अस्पताल ने कर्णाली के सुरखेत प्रादेशिक अस्पताल, सुदूर पश्चिम के सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढ़ी और गंडकी के पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में सेवाएं प्रदान की हैं। अस्पताल ने सुरखेत और धनगढ़ी में 2 बार शिविर लगाकर सेवाएं दी हैं। मंगलवार को सुरखेत और बुधवार को धनगढ़ी में 3री बार सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गंडकी में अभी तक केवल एक बार सेवा दी गई है। अस्पताल के उपनिदेशक डॉ उमेश नेपाल के अनुसार चिकित्सकों सहित 8 सदस्यीय टीम ने सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने बताया कि एक बार में लगभग 150 कैंसर रोगियों ने सेवाओं का लाभ उठाया है। ये पहल क्षेत्रीय स्तर पर कैंसर रोगियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तरी सीरियाई शहर के बाहरी इलाके में एक कार बम ब्लास्ट हुआ है। इस विस्फोट में कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। मृतकों में अधिकांश महिलाएं शामिल हैं। इस ब्लास्ट में एक दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। कार में विस्फोट मनबिज शहर के बाहरी इलाके में एक वाहन के बगल में हुआ, जिसमें ज्यादातर महिला कृषि श्रमिक थीं। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार अस्पताल के एक नर्स मोहम्मद अहमद ने कहा कि मृतकों में 18 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। स्थानीय सीरियाई नागरिक सुरक्षा के अनुसार 15 अन्य महिलाएं घायल हुईं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार किसी समूह ने अब तक विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। नागरिक सुरक्षा के उपनिदेशक मुनीर मुस्तफा ने कहा कि यह मनबिज में एक महीने से भी कम समय में 7वां कार बम विस्फोट था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किशोरियों के लिए कल पूरे देश में सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध होगा टीका अभियान संचालित। 10 से 14 साल की उम्र की किशोरियों को टीका लगाए जाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। आत्मविश्वास के साथ काम किया जाए तो नेपाल कभी पिछड़ेगा नहीं, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। और सीरिया में एक कार बम विस्फोट में 19 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।